मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFAIS के आज 13 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की इतवार से शुरू होने वाली क्लासेस के लिए अपने एडमिशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मानसी यमुनानगर हरियाणा से, मुकेश कुमार यादव आपका गांव है पापलो जिला कोडरमा झारखंड से और विकास यादव अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे आंतरिक सुरक्षा की चिंता इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात जो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण भी होती जा रही है दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश में एक घटना घटित हुई है और वो ये कि आप देख रहे हैं कि CAA जो हमारा नागरिकता संशोधन कानून आया है उसको लेकर के पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से विरोध हो रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हुआ यह है कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया था नागरिकता संशोधन अधिनियम का, उनके बकायदे नाम और जो फोटो वगैरह हैं वो दीवारों पर चिपकाए गए, यानी कि पोस्टर्स लगा लगा करके बकायदे चिपकाए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी तरफ से संज्ञान लिया और सरकार की इस बारे में आलोचना की, या कह लीजिए कि सरकार पर टिप्पणी की कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, जवाब दें। इसे मतलब गलत ठहराया, गलत इस मायने में ठहराया। देखिए, दो बातें यहां हैं और मुझे लगता है कि ये आपके दूसरे आंसर राइटिंग में भी ये घटना काम आ सकती है। पहला तो यह है कि देखिए, जो विरोध कर रहे हैं तो अगर लोकतंत्र में विरोध नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो विपक्ष का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने भी संसद में कहीं ना कहीं विरोध किया ही था। कुछ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो विरोध किया ही था, ऐसा तो नहीं था कि ये कानून सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तो आप उन हमारे सांसदों को क्या कहेंगे जिन्होंने विरोध किया। और फिर कोई भी कानून बनकर के अगर आ जाता है तो हम जनता उसे मानने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम बाध्य ही है। ठीक है, कानून अपना काम करेगी, जहां भी उसे हम नहीं मानेंगे कानून उसकी सजा देगी, जो कुछ भी हो वो अपने कदम उठाएगी और उसका उसे अधिकार है, लेकिन नागरिक को अपनी तरफ से उसका विरोध करने का तो अधिकार है। अब यह बात अलग है कि सरकार उस विरोध को स्वीकार न करे, रिजेक्ट कर दे, वो उसका अधिकार है। और ठीक है, संसद ने पारित कर दिया, इसका मतलब है कि राष्ट्र ने उसे कानून बना लिया है। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे ही, लेख भी लिखे जाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, तो आप अगर उनके इस तरीके से सीधे सीधे पोस्टर बनवा करके और दीवारों पर चिपका देते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो निजता है उसका उल्लंघन है, क्योंकि आप उनकी पहचान दे रहे हैं, उन्हें एक प्रकार से राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। और फिर वो बाहर निकलेंगे तो कुछ भी उनके ऊपर फब्तियां कसी जा सकती हैं, उन पर हिंसात्मक अटैक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो निजता का भी उल्लंघन हो रहा है। तो दोनों चीजें आप देखिए कि निजता के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है और दूसरा अभिव्यक्ति की आजादी का भी उल्लंघन हो रहा है। फिर तो इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो, खराब हो सकती है, और सच पूछे तो लोकतंत्र ही अपनी आत्मा खो बैठेगा, आप यूं कह लीजिए कि अपना अर्थ खो बैठेगा। तो ये एक प्रश्न है। हाई कोर्ट ने इसे गलत ठहराया, सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इसको आप कह लीजिए कि इस डिसीजन को उलटने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो देशद्रोह या राजद्रोह की जो परिभाषा है इसको लेकर के इससे पहले भी मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन मैं कहना यहाँ यह चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप बकायदे निगाह रखें। दोस्तों, शेयर मार्केट की क्या हालत हो गई है इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, स्थितियां लगभग वही हैं, लगातार शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। दो कारण है जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्रूड के जो दाम है वो शेयर पूरे के पूरे बाजार में बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब उसकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है, कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। लेकिन चूंकि शेयर मार्केट पहली बार, मतलब इतने लंबे अरसे के बाद पहली बार इतनी तेजी के साथ एक तरफा गिरता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट की भी आपको थोड़ी सी व्यावहारिक जानकारी होनी चाहिए, तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको तैयार कर लेना चाहिए, खासकर मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से। हालांकि पिछले 7-8 साल के पेपर्स में कभी शेयर मार्केट के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। दोस्तों, एक मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, श्याम सरन जी का लिखा हुआ, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स थे। पारिस्थितिकीय संकट का संकेत है कोविड, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल पर आप लोग नोट्स बना लें। केवल आपको एक सुझाव के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि ये जो कोविड 19 है, ठीक है, रीजंस बाद में एग्जैक्ट पता लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने पर्यावरण को डिस्टर्ब कर दिया है उसके कारण है। और पर्यावरण को डिस्टर्ब क्यों किया गया है, इस पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक बात कही जा रही है कि जो कोविड 19 जो वायरस आया है, ये चमगादड़ से आया है। आपको मालूम है कि चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ, तो वहां की स्थिति को उन्होंने बताया है कि किस क्यों ये ऐसा हुआ, कि क्यों चमगादड़ वहां के जो दूसरे पशु थे उनके संपर्क में आने लगे। इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअल में हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही, चलिए औद्योगिकरण तो एक बात है, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण नष्ट हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन जो दूसरी बात हो रही है वो ये कि हमने कृषि का भी औद्योगिकीकरण कर दिया और पशुपालन का भी औद्योगिकीकरण कर दिया है। कृषि का औद्योगिकीकरण आप देखिए कि हमने बीज के जीन्स बदल दिए हैं और क्या क्या सिस्टम हो गया है, उसमें दुनिया भर के रासायनिक खाद डालने लगे हैं, तो वो अपने स्वाभाविक वृत्ति खोल बैठे हैं। और यहां तक कि तो बाकायदे रिसर्च में आ चुका है, खासकर भारत में जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जिन बीजों का इस्तेमाल किया गया, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां डाली गई, उसकी वजह से नए नए तरह के कीट पैदा हो गए। अब यही कीट तो वायरस के कारण बनते हैं, क्योंकि हुआ यह है कि अब स्थिति यह होती चली जा रही है कि मनुष्य और पशु का जो संपर्क है वो बहुत निकट का संपर्क होता चला जा रहा है। आपने जंगलों को काट दिए तो आप देखिए कि आप सुनते रहते हैं कि हाथी वहां घुस गए, चीता जो है ना वहां घुस गए, सियार लकड़बग्घा उस शहर में घुस गए, तो अब वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, या हम उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो उनके वायरस का खतरा बढ़ रहा है। पक्षियां गायब होते चले जा रहे हैं, अभी भारत में प्रजाति पक्षी सम्मेलन हुआ, देखिए तो बता रहे हैं कि कितने पक्षी गायब हो रहे हैं। जब पक्षी गायब हो रहे हैं तो उसमें बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो इन वायरस को खाते थे, नष्ट करते थे, तो उनको खाने वाले जो पक्षी थे वो गायब होते चले जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हम निर्मित कर रहे हैं। पशुओं के साथ भी यही हो रहा है। पशुपालन के तहत आप देखिए कि पहले मुर्गियां घूम रही हैं घर में दूर दूर और फैले हुए हैं, तो उनके वायरस उतने फैलते नहीं थे, अब आपने मुर्गी घर बना दिए हैं, वहीं पर मुर्गियां रह रही हैं, एक मुर्गी को बीमारी हुई तो सारी की सारी मुर्गियां नष्ट हो गई, वहां वायरस का कितना बड़ा प्रकोप होगा और मनुष्य उनके संपर्क में आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें। मैंने इशारे के तौर पर आपको कुछ बातें बता दी हैं कि आप उन कारणों को आइडेंटिफाई करें इस लेख में जो एक प्रकार से मनुष्यों को पशुओं के साथ रहने के लिए बाध्य कर रहा है और हमारे पूरे के पूरे पर्यावरण के जो चक्र का जो चक्र है, जो एक प्राकृतिक चक्र है, उसने डिस्टर्ब कर दिया है। और इन्होंने भाषा का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, कुछ बहुत खूबसूरत शब्द इन्होंने लिए हैं। मैं चाहूंगा कि उन शब्दों को भी आप ध्यान में रखें और नोट कर लें ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में उनका उपयोग कर सकें। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, वो है आंतरिक सुरक्षा का सवाल, आंतरिक सुरक्षा की चिंता। देखिए, जो आंतरिक सुरक्षा है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, सुरक्षा टॉपिक है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा भी है, बाह्य सुरक्षा भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, ये सारे हैं। और सुरक्षा पर काफ़ी प्रश्न आते हैं, मेंस में आप मान करके चलिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो सिक्योरिटी पर आ ही जाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आंतरिक सुरक्षा का मामला खासकर अभी इसलिए आया है कि सीए के विरोध में आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी स्थितियां हुई उसको लेकर के, और खासकर दिल्ली के संदर्भ में, मतलब दिल्ली में तो एक प्रकार के सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति आ गई, जिसमें 50 से ऊपर लोग मारे गए हैं, और राजधानी में इस तरह की घटना का घटित होना एक तरह से बहुत चिंताजनक बात है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के क्या सवाल इस दंगों से उभर रहे हैं। राइट, देखिए, जब एक चीज मैं यहां आपको और बता दूं कि जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो उसका संबंध सिर्फ दंगों से नहीं है। देखिए, नक्सलवाद जो बढ़ रहा है वो हमारे आंतरिक सुरक्षा को थ्रेट दे रहा है। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखते हैं कि कुछ उग्रवादी गतिविधियां हो रही, वो भी कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक सुरक्षा से ही जुड़ी हुई है। जो आप यूं कह लीजिए कि सीमा पार से जो आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर क्षेत्र वगैरह में होती रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ मामला है, चाहे भले ही वो प्रायोजित हो बाहर से। और ये जो दंगे हैं इस तरह के, ये भी आंतरिक सुरक्षा को एक चुनौती देते हैं। देखिए, इससे क्या क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं, केवल उन सवालों की तरफ ही मैं इशारा कर सकूंगा समय को देखते हुए। पहला तो यह है कि इन दंगों में ये देखा गया कि नागरिकों ने हथियारों का खूब उपयोग किया, हथियारों का इस्तेमाल किया। तो अगर वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक सोचने की बात है कि उनके पास इतने हथियार आए कहाँ से, क्या उनके पास सच में लाइसेंस थे, और अगर लाइसेंस थे तो उसका किस रूप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि नागरिकों के पास इस तरह से हथियार पहुंच जाना अपने आप में कहीं आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता हुआ मालूम पड़ता है। दूसरा, आप देखते हैं कि इस इन दंगों को रोकने में यह माना जा रहा है कि प्रशासन एक तरह से विफल रहा है, प्रशासन विफल रहा है और पुलिस भी विफल रही है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए टिप्पणी की भी है, बहुत जबरदस्त रूप से टिप्पणी की है। तो इस स्थिति में क्या है कि जो प्रशासन की जो विश्वसनीयता है वो एक प्रकार से डाउटफुल हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, इसी के साथ ही साथ मतलब लोग ये भी महसूस करने लगे हैं कि शायद भारत सरकार के पास इस तरह के आंतरिक सुरक्षा संबंधी कोई नीति नहीं है, खासकर जब इस तरह के दंगे होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। बीच में कुछ इस तरह की नीति बनाने की कोशिश भी हुई थी, एक्ट लाने की भी बात हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई स्पष्ट एक्ट अधिनियम इसके बारे में नहीं है। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि बार बार पुलिस सुधार की बात कही जाती है, आयोग बैठे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन हमारे यहां अभी तक पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कोई बहुत अच्छे कदम नहीं उठाए गए हैं। तो ये भी अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भैया क्यों नहीं कदम उठाते। आयोग बैठाया जाता है, आयोग ने बकायदे जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही व्यावहारिक स्तर की है, तो फिर उन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया क्यों नहीं जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है दोस्तों कि देखिए जो दंगे होते हैं वो ज्यादातर राज्यों में ही होते हैं, केंद्र तो के पास अपनी कोई ऐसी टेरिटरी तो है नहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दे तो। तो ये भी देखा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों में इन दंगों को रोकने के लिए कोई बहुत स्पष्ट समन्वय दिखाई नहीं देता, और अगर वहां पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है सत्ता में तब वो स्थिति और भी ज्यादा आप कह लीजिए कि गंभीर बन जाती है और भी चिंताजनक बन जाती है। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है इसे अभी ये राज्य सूची में है तो इसे निकाल करके क्या समवर्ती सूची में डाल दिया जाए ताकि केंद्र बिना राज्य की अनुमति के उसमें हस्तक्षेप कर सके, ये भी एक बात है। एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि अब खासकर दिल्ली के दंगों में देखिए कि उसके पीछे कहीं ना कहीं नेताओं के जो भड़काऊ जो भाषण होते हैं नफरत फैलाने वाले वो कुछ सीमा तक जिम्मेदार रहे हैं। तो अगर किसी के इस तरह के भाषण से कोई दंगा भड़कता है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलती है, तो फिर ये जो व्यक्ति हैं जो नेता ही क्यों ना हो इनको क्या माना जाए, कि अपराधी नहीं माना जाए, उनको उसी तरह से ट्रीट ना किया जाए। और साथ ही साथ एक बात ये भी कही जाती है कि हमारी जो एक आपराधिक न्याय प्रणाली है वो भी शायद उतनी कारगर नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आंतरिक सुरक्षा के मामले में उठ करके खड़े हुए हैं, खासकर दिल्ली में हुए दंगों के संदर्भ में। इसको लेकर के मैं आपको एक आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक जागरण में छपा है, आप इसे देख लेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकाल लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अनूप राज, अनिश कुमार, अखिलेश्वर राज बिहार से, और शुभम सिंह गोहिल उज्जैन मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब दो दिनों के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, दो दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर बातें होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।